अरपा रेडियो पर प्रस्तुत है कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में हम आपको फिल्म जगत के कुछ प्रतिष्ठित और कुछ उभरते हुए कलाकारों से मुलाकात करवाते हैं। इनसे मुलाकात करते हैं सजीव सारथी, रेडियो प्लेबैक इंडिया के सौजन्य से प्राप्त। आइए सुने आज का ये कार्यक्रम।
नमस्कार दोस्तों, रेडियो प्लेबैक इंडिया और कार्यक्रम एक मुलाकात जरूरी है मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मैं यानी आपका दोस्त, आपका साथी सजीव सारथी। दोस्तों, हमारे देश में साहित्य और सिनेमा का जोड़ बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये भी गौरतलब है कि जब भी ये संगम हुआ है परिणाम हमेशा बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। ऐसा ही एक नया प्रयोग अभी हुआ है इसी साल जो फिल्म प्रदर्शित होने वाली है, जिसका नाम है बियाबा द कर्स ऑफ वुमन, जिसके निर्देशक हैं कृष्णकांत पांडे। और ये फिल्म बनी है मेरे बहुत ही अजीज मित्र और इस देश के जाने माने साहित्यकार पंकज सुबीर की कहानी पर। इस कहानी का नाम है दो एकांत। तो इस कहानी और इस फीचर फिल्म के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे आज पंकज सुबीर जी के साथ। पंकज भाई, आपका रेडियो प्लेबैक इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है।
सजीव भाई नमस्कार, और रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
जी पंकज भाई, और आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी फिल्म जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में खूब धमाल मचा रही है, और ऐसा होना भी चाहिए था, आखिर कहानी जो आपकी थी। अच्छा पंकज भाई, आपकी जो कहानियां हैं अक्सर मैंने देखा है कि उनका जो शीर्षक होता है वो बहुत ही आकर्षक होता है, और ये भी कहानी इसका अपवाद नहीं है। जैसे उदास आंखों वाला लड़का या फिर अंधेरे का गणित, कमाल के शीर्षक होते हैं। शीर्षक ही अपने आप में एक पूरी कहानी कह जाते हैं, और ये दो एकांत भी एक लाजवाब शीर्षक है। तो कैसे सोच लेते हैं इतने बड़े बड़े शीर्षक आप कहानियों के लिए?
जी सजीव भाई, आपने ठीक कहा। असल में मैं जब कहानी लिखता हूँ तो सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखता हूँ कि कहानी का शीर्षक बहुत अच्छा हो। अच्छे से मेरा मतलब ये है कि जब किसी भी पत्रिका में या किसी किताब में श्रोता कहानियों की सूची पढ़ रहा हो तो उसको मेरी कहानी का शीर्षक कुछ अलग हटकर आकर्षित करे। इसके पीछे कारण मेरा बस यही है कि कहानी तो बाद में पढ़ी जाएगी, सबसे पहला तो शीर्षक ही होगा जो उस पाठक को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसीलिए जो आपने कहा कि आपने तो मेरी सारी कहानियां पढ़ी हैं, तो मैं बहुत कोशिश करता हूं कि मेरी कहानियों के शीर्षक कुछ अलग हटके हों, कुछ आकर्षक हों, और श्रोता के मन में एक प्रकार की उत्सुकता जगाए कि ये शीर्षक है तो कहानी क्या होगी।
जी पंकज जी, तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए बताइए कि ये जो दो एकांत आपकी कहानी है जिस पर ये बढ़िया सी फिल्म बनी है बियाबा द कर्स ऑफ वुमन, ये कहानी आखिर है क्या, और इसका सब्जेक्ट है क्या, इसका मूल है क्या? थोड़ा सा ये हमारे उन श्रोताओं के लिए बताइए जिन्होंने ये कहानी शायद अभी तक नहीं पढ़ी।
जी सजीव भाई, ये जो कहानी है ये कहानी मेरी एक पुरानी कहानी है, काफी पुरानी तो नहीं लेकिन 5-6 साल पुरानी कहानी है, जो प्रगतिशील वसुधा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और ये कहानी हमारे समाज की एक बड़ी विकृति कन्या भ्रूण हत्या पर आधारित है, पर केंद्रित है। और इसमें एक ऐसे समय की कल्पना मैंने की है कि जब कन्या भ्रूण हत्या के चलते पृथ्वी से सारी स्त्रियां समाप्त हो गई हैं, और सारी स्त्रियां समाप्त हो गई हैं तो केवल पुरुष ही बचे रह गए हैं। उस बचे हुए समय में एक दादा और उसके पोते की कहानी है। दोनों अपने अपने एकांत जी रहे हैं, इसीलिए इसका नाम दो एकांत रखा था मैंने। क्योंकि फिल्म आ रही है इसलिए मैं कहानी को बहुत ज़्यादा ओपन नहीं कर सकता, लेकिन बस एक दादा है जिसका एक पोता है, बीच की एक पीढ़ी जो पिता है वो नहीं है, उसकी डेथ हो गई है, और दादा और पोते अपना अपना एकांत एक सूने से घर में जी रहे हैं। ये उस एकांत की कहानी।
जी पंकज भाई, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। और जैसे आपने जब कहानी लिखी तो उस वक्त आपने नहीं सोचा हुआ कि इसको फिल्म के रूप में तब्दील किया जाएगा, तो बाद में जब इस फिल्म को अडेप्ट किया गया और इसका इसे एक फिल्म में आप तब्दील किया गया और इसका स्क्रीन प्ले लिखा गया, तो आप कितने संतुष्ट हैं उस स्क्रीन प्ले से जो आपकी कहानी पर आधारित है?
सजीव भाई, इसमें एक बात तो अच्छी हुई कि जो मेरे फिल्म के निर्देशक हैं कृष्णकांत पंड्या जी, वो साहित्य के बहुत अच्छे, बहुत सुधी पाठक हैं और खुद भी लिखते हैं कुछ कविताएं वगैरह। तो जब इस कहानी पर हम लोग बैठे और इस कहानी पर हम चर्चा कर रहे थे, तो मेरी सबसे पहली शर्त यही थी कि कहानी का जो मूल स्वर है उसके साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया। फिर हम लोगों ने बैठकर बहुत सारी चर्चा की इस कहानी पर, उसके दृश्य बनाए, सीन बनाए। मेरे लिए तो ये पहला अनुभव था कि मैं किसी फिल्म की स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट के साथ जुड़ रहा था। तो हम दोनों ने मिलकर ही वो सारा काम किया। फिल्म का स्क्रीन प्ले उन्होंने पूरा, जो सीन बाय सीन जैसा तैयार होता है, उन्होंने तैयार करवाया और संवाद मैंने लिखे। तो इस तरह से हम दोनों ने मिलकर वो सारा काम किया। और शूटिंग के दौरान भी उन्होंने कहा कि आप उपस्थित रहिएगा, तो मैं वहाँ उपस्थित रहा। तो मुझे नहीं लगता कि कहानी के साथ कहीं भी, कहानी के मूल स्वर के साथ कहीं भी कोई छेड़छाड़ या कुछ हुआ है। और फिल्म अब जब मैंने देखी है तो लगभग वैसी ही है जैसी कहानी थी।
जी पंकज भाई, इसी से जुड़ा एक सवाल ये भी आता है कि जो फिल्में होती हैं वो एक मनोरंजन का माध्यम अधिक मानी जाती है, तो ऐसे में कहानी जो है, क्योंकि आपकी साहित्यिक कहानी है और वो बहुत ही रियलिस्टिक आपने वर्णन उसमें किया होगा, तो कहीं वो मनोरंजन का जो पक्ष है वो फिल्म में छूट तो नहीं गया?
नहीं सजीव भाई, चूंकि मेरे जो निर्देशक हैं वो उन्होंने इससे पूर्व बेदर्दी एक फिल्म अजय देवगन की आई थी और पनाह नसीरुद्दीन शाह की फिल्म आई थी, जैसी कमर्शियल फिल्में बनाई हैं, थोड़ी सी बेवफाई जैसी फिल्मों के साथ वो सहायक निर्देशक के रूप में जुड़े रहे हैं। तो उनके पास में एक विज़न है कि कोई भी कहानी में संतुलन कैसे साधा जाए। तो इस फिल्म में कला पक्ष और व्यावसायिक पक्ष का बहुत अच्छा संतुलन साधा गया है। ये ऑफबीट फिल्म तो है ही है, चूँकि ये एक सरोकार, सामाजिक सरोकार की बात करती है, लेकिन इस फिल्म में व्यावसायिक रूप से ये भी देखा गया है कि श्रोता के लिए जो मनोरंजन पक्ष है वो भी हो। गाने हैं इसके अंदर और प्रेम है, प्रेम तो लगभग सभी रचनाओं का मूल स्वर होता है, तो वो सब कुछ है। मतलब ये कला, फिल्म और व्यावसायिक सिनेमा का एक बहुत अच्छा मिश्रण है।
अच्छा पंकज जी, आपने इस फिल्म के संवाद भी लिखे हैं, तो मेरे ख्याल से संवाद लिखना आपके लिए पहली बार का अनुभव रहा होगा, ये अनुभव कैसा रहा?
संवाद लिखना बहुत नया अनुभव तो नहीं रहा, क्योंकि मेरी कई सारी कहानियाँ ऐसी हैं जिसमें संवाद बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उस हिसाब से मुझे कुछ नया अनुभव तो नहीं रहा। लेकिन हाँ, फिल्मों के लिए लिखना थोड़ा सा इस मायने में अलग होता है कि वहाँ पर आम बातचीत की भाषा, आम बोलचाल की भाषा होनी चाहिए। और एक और चीज़ कि आपका जो दर्शक है वो दर्शक उन संवादों के साथ बहुत अच्छे से तादाद में बिठा सकते। तो मैंने जो कोशिश की है इस फिल्म में कि मैंने कहावतों का, मुहावरों का, लोकोक्तियों का बहुत उपयोग किया है, और इस बात को लेकर काफ़ी प्रशंसा भी हो रही है कि जो आम बोलचाल की भाषा की कहावतें और मुहावरे हैं उनको मैंने बहुत संवादों में उपयोग किया है।
जी, और इस फिल्म में आपने एक गाना भी लिखा है और शायद वो कई चरणों में वो गाना आता है फिल्म के अंदर, तो ये गाना जो है अभी म्यूजिक हालांकि लॉन्च नहीं हुआ है, पर थोड़ा सा हम अपने श्रोताओं के साथ इस गाने को अगर शेयर करें, आपकी इजाजत हो तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। गाने के बारे में बताइए, उस गाने के जुड़ी हुई आपकी जो मेकिंग है, कैसे गाना बना, संगीतकार कौन है उनके बारे में कुछ बताइए, और जो रिकॉर्डिंग से जुड़े हुए जो तजुर्बे आपके रहे वो प्लीज हम लोग के साथ शेयर कीजिए।
सजीव भाई, गाना लिखना मेरे लिए वो एक नया अनुभव था, क्योंकि मैं कवि भी हूँ, गजलें लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ, गीत लिखता हूँ, इसलिए वो एक गीत को लेकर अपने अंदर जो एक गुण होता है वो तो था, लेकिन फिल्मों के लिए लिखना वो ज़रा अलग बात होती है। और हुआ बहुत संयोग से ही ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ बॉम्बे में अपने डायरेक्टर के साथ बैठा था, हम लोग जब कहानी पर काम कर रहे थे, तब उन्होंने अचानक कहा मुझसे कि पंकज जी, मैंने कल आपका यूट्यूब पर एक वीडियो देखा जिसमें आप कविता पढ़ रहे हैं, तो आप तो कवि भी हैं। मैंने कहा हाँ, मैं कवि भी हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो आप इस फिल्म के का गीत, एक ही गीत जो है उसको क्यों नहीं लिखते हैं? तो मैंने कहा कोशिश करूँगा मैं। वहीं पर फिर मैंने उनसे कहा कि मैं कुछ आपको कल जब संवाद लिखूंगा तभी उसी दौरान आपको कुछ पंक्तियां भी बताता हूँ। कुछ पंक्तियां मैंने उन्हें सुनाई, उन्हें पसंद आई, फिर हम लोगों ने उस पर चर्चा की और व्हाट्सएप पर हमारी बार बार चर्चाएं होती रहीं। व्हाट्सएप पर मैं उन्हें और पंक्ति भेजता, वो उस पंक्तियों में से जो पंक्ति उन्हें अच्छी लगती उसे पसंद कर लेते, और इस तरह से फिर बहुत बहुत करीब करीब हम लोगों ने 7-8 दिन उस पर काम किया, तब जाकर एक गीत पूरा हुआ। और जैसा आपने कहा कि गीत लंबा है, इसमें 6 अंतरे हैं और 6 अंतरों में से 3 को संगीतबद्ध किया गया है, बाकी के 3 अंतरे केवल गाए गए हैं बिना संगीत के, और वो फिल्म में अलग अलग जगहों पर बजते हैं। इस फिल्म का संगीतकार भी नए हैं, मनोज नयन उनका नाम है, और उन्होंने बहुत बहुत अच्छा संगीत दिया है। मतलब जिस तरह से उन्होंने उस गीत को, वो गीत एक यात्रा है, एक स्त्री के जीवन की यात्रा है, जिसको मैंने नदी के रूप में पूरे गीत में बताया गया है। तो ये एक अलग तरह का गीत है, और मुझे लगता है कि मेरे डायरेक्टर का भी ऐसा कहना है कि बहुत लंबे समय बाद हिंदी फिल्म में कोई इस तरह का गीत आ रहा है।
पंकज भाई, थोड़ा सा आप अपनी आवाज में इस गीत को नरेट कर दीजिए।
सजीव जी, ये जैसा मैंने आपसे कहा कि ये एक स्त्री का जीवन और एक नदी का जीवन, उन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए ये गीत आगे बढ़ता है, और नदी का जो प्रवाह है और नदी के रास्ते की जो रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, और आखिर में सागर से उसका मिलन, वहां तक का पूरा ये एक चित्रण है। और इस पूरी यात्रा में कई पड़ाव आते हैं, जो मैंने कहा कि 6 अलग अलग तरह के अंतरे हैं। अलग अलग तरह के अंतरे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये फिल्म का थीम सॉन्ग है। थीम सॉन्ग है तो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से अंतरों का उपयोग किया गया। फिल्म में भी जो संगीतबद्ध किया हुआ गाना है 3 अंतरों का, वो एक साथ नहीं आकर वो भी 3 टुकड़ों में अलग अलग आता है, फिर 3 जगहों पर वो आता है जो बिना संगीत के 3 अंतरे हैं। इस प्रकार 6 स्थानों पर ये गीत बजता है। और मैंने इस गीत का फिल्मांकन देखा है, जो कि रेगिस्तान में किया गया था, तपती हुई रेत में, और वहाँ मुझे लगा कि ये गीत, वहाँ अगर नदी की कल्पना करते हुए इस गीत का फिल्मांकन किया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो 2 एकांत, मेरी फिल्म की जो उदासी है, उस उदासी को ठीक प्रकार से रेगिस्तान में पकड़ा जा रहा है, कि वही स्वर जो है वो इस गीत में भी है और वही कहानी में भी है।
तो पंकज भाई, 2 पंक्तियां सुनानी तो बनती है।
जी सजीव जी, मैं इस गीत का एक अंतरा सुनाता हूँ, जो कि मेरे ही एक प्रसिद्ध गीत का अंतरा है, और उसको यथावत इस गीत में भी शामिल किया गया है। रुक रहा चल चल के, रुक कर फिर चले, एक धुआं लो बान का सीढ़ी चढ़े, गंध कोई डोलती फिरती सी है, आते जाते छूके जो पागल करे, टोह लेता मन बहुत हैरान है, आज तक देखी नहीं ऐसी नदी।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो प्लेबैक इंडिया, और कार्यक्रम चल रहा है एक मुलाकात जरूरी है। इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में आज जो हमारे मेहमान हैं, वो हैं मेरे बहुत ही प्रिय मित्र और इस देश के एक जाने पहचाने साहित्यकार पंकज सुबीर जी, जिनकी कहानी 2 एकांत पर आधारित एक फिल्म बनी है, बियाबां द कर्स ऑफ वुमन, जो आजकल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में खूब धूम मचा रही है, और इस फिल्म के निर्देशक हैं कृष्णकांत पंड्या जी। तो पंकज भाई, ये कहानी थोड़ी सी बताइए कि ये जो कहानी है, ये आपकी कृष्णकांत पंड्या जी ने कैसे पढ़ी, और किस तरह से ये फिल्म का जो आइडिया है ये डेवलप हुआ?
सजीव भाई, वो भी एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं पूरी सुनाता हूँ, श्रोताओं को भी आनंद आएगा। असल में हुआ ये कि मैं उन दिनों अपने उपन्यास अकाल में उत्सव पर काम कर रहा था, और मेरी एक जो रचना प्रक्रिया है, जिसके तहत मैं किसी एक कृति पर जब काम कर रहा होता हूँ, तो मैं कहीं और किसी दूसरी रचना पर, या कहीं और, या तमाम दुनिया से ही कट जाता हूँ। फिर उपन्यास तो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन मांगता है। तो उसी दौरान जब मैं उस अकाल में उत्सव को लिख रहा था, तो एक दिन अचानक एक मेरे मोबाइल पर कॉल आया, अपरिचित नंबर से कॉल था। मैंने उठाया तो वहाँ से आवाज़ आई कि मैं कृष्णकांत पंड्या बोल रहा हूँ, मैंने आपकी एक कहानी पढ़ी है और मैं उस कहानी पर फिल्म बनाना चाहता हूँ। तो पहले तो मुझे लगा कि कोई या तो मजाक कर रहा है या कुछ और बात है, तो मैंने भी बहुत ही साधारण तरीके से बातचीत की, और पहली बातचीत में मतलब बहुत ज़्यादा बातें नहीं हुई, और फिर वो फ़ोन कट गया। फिर 2-3 दिन बाद फिर से उनका फ़ोन आया, और फिर उन्होंने कहा कि हमारी बात हुई थी और आपने क्या सोचा उस कहानी पर फिल्म बनाने को लेकर। तो मैंने पूछा उनसे, असली में वो इस कहानी पर नहीं बनाना चाहते थे, वो मेरी एक दूसरी कहानी है, 4th, 5th, and 6th कसम, जिसको लेकर एक भारतीय ज्ञानपीठ से स्वर्गीय रविंद्र कालिया जी ने किताब संपादित की थी, 9 लंबी कहानियाँ, उसमें वो कहानी शामिल थी। और पंड्या जी ने वो 9 लंबी कहानियां किताब कहीं से खरीदी थी और उसमें उस कहानी को पढ़कर, क्योंकि उस किताब में अब रोचक तो यह है कि उस पूरी किताब में कहीं लेखक का कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं दिया गया था, तो उन्होंने रविंद्र कालिया जी को फ़ोन किया। रविंद्र कालिया जी से फ़ोन करके उन्होंने मेरा नंबर लिया था और फिर मुझे कॉल किया था। ये पूरी सारी घटना उन्होंने मुझे बताई और फिर उन्होंने कहा कि वो इस कहानी पर काम करना चाहते हैं, लेकिन जो प्रोड्यूसर है उस प्रोड्यूसर के पास में समय की थोड़ी सी कमी है और बजट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मैंने उनसे कहा कि चौथी पांचवी और छठवीं कसम जो है उसके ऊपर अगर आप फिल्म बनाएंगे तो वो तो ज़्यादा बजट की मांग करेगी, क्योंकि वो कहानी फैली हुई है, गांव से शहर तक जाती है और पूरे में जाती है। तो उन्होंने कहा कि पंकज जी, क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो कि कम बजट में एक घर या दो घर की शूटिंग में हो जाए? तो मैंने कहा कि हाँ, एक कहानी मेरी है, दो एकांत, तो मैं आपको भेजता हूँ, आप उसे पढ़िए। तो फिर मैंने अपनी किताब महुआ गटवारी उन्हें भेजी जिसमें वो कहानी शामिल है, और पढ़ते से ही उन्हें वो कहानी इतनी पसंद आई कि उन्होंने कहा कि नहीं पंकज जी, हम चौथी पांचवी कसम पर बाद में काम करेंगे, लेकिन पहले हम इसी को बनाते हैं, क्योंकि ये हमारे प्रोडक्शन की जो अभी जो रिक्वायरमेंट है उन सब पर बिल्कुल खरी बैठ रही है, क्योंकि इसमें लोकेशंस भी ज़्यादा नहीं है और कम बजट में काम हो जाएगा और कम समय में भी हो जाएगा। तो फिर चौथी पांचवी और छठवीं कसम को उन्होंने फिलहाल ठंडे बस्ते में डालकर दो एकांत पर काम शुरू किया और फिर दो एकांत पर ये फिल्म बनकर तैयार हुई।
जी पंकज भाई, तो कितना समय लगा इस फिल्म को पूरा मुकम्मल होने में?
सचिव भाई, फिल्मों की जो प्रक्रिया होती है उसमें शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन भी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है, तो ये मानकर चलिए कि पूरा काम होने में लगभग एक वर्ष तो लग ही गया। हम जो मैं बात कर रहा था वो बात मई 2015 की वो बात है, जबकि हमने पहली बार उस कहानी को लेकर पंड्या जी ने और हमने चर्चा की थी, और मई जून 2016 तक आते आते ही वो फिल्म पूरी तरह से कंप्लीट हो पाई। उसमें शूटिंग, पोस्ट प्रोडक्शन और वो सारा पब्लिसिटी का कार्य और डिजाइनिंग का कार्य, वो सब मिलाकर एक वर्ष लगा। इसमें एक मुझे भी ये लगा कि जो हम देखते हैं फिल्में, और हमको फिल्में देखते समय ऐसा लगता है कि फिल्में बनाने में कोई बहुत ज़्यादा श्रम या बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, लेकिन जब मैंने इस पूरी फिल्म की रचना प्रक्रिया को देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत ही श्रमपूर्वक किया जाने वाला काम है, जिसमें एक एक जो कार्य है वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन की मांग करता है और बहुत ज़्यादा श्रम लेता है। कई कई लोग मिलकर उस पर काम करते हैं। मैंने उस स्टूडियो को भी देखा जहाँ एडिटिंग होती थी, जहाँ पर मिक्सिंग होती थी, जहाँ पर फिल्म के कलर वगैरह ठीक किए जाते हैं, फिल्म की ब्राइटनेस और कंट्रास्ट को ठीक किया जाता है। वो बहुत इतनी बारीकी से किया जाने वाला काम है कि वो कम से कम एक साल से पहले तो हो भी नहीं सकता। तो ये फिल्म भी लगभग एक साल सवा साल में कम्प्लीट।
जी पंकज भाई, और अब ये फिल्म पूरी हो चुकी है और विदेशों में इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में खूब अच्छी प्रशंसा भी पा रही है, तो अब आप कैसा महसूस कर पा रहे हैं? एक कहानी जो आज एक पूरे पर्दे पर आ रही है और उसको कई लाखों लोग देख रहे हैं, तो ये कैसा फील आपको हो रहा है इस बार?
सजीव जी, ये तो एक सचमुच एक बहुत अच्छा एक नया अनुभव है कि वो पात्र, जिन पात्रों को आपने रचा था, उन पात्रों को आप सांस लेते हुए, चलते फिरते हुए पर्दे पर देखते हैं, तो पहला तो अनुभव वही बहुत अद्भुत होता है कि वो पात्र जो आपने केवल शब्दों से कागजों पर रचा था, वो शब्दों और कागजों से निकलकर सजीव हो उठता है और आपके सामने चलता फिरता हुआ दिखाई देता है। पहला तो वही अनुभव होता है, और फिर ये दूसरा अनुभव और बहुत अच्छा होता है कि उस कहानी को, उस फिल्म को पसंद किया जा रहा है और उसमें उसे सराहना मिल रही है। मैंने देखा है कि जहाँ पर भी इस फिल्म का प्रदर्शन होता है, वहाँ पर जहाँ पर कहानी फिल्म जहाँ ख़त्म होती, वहाँ पर क्लैपिंग या तालियों से इस फिल्म का स्वागत ज़रूर किया जाता है। वो तालियाँ सबसे बड़ा पुरस्कार या सम्मान होता है किसी भी रचनाकार के लिए। तो निश्चित रूप से ये मेरे लिए बहुत अच्छा अनुभव है कि वो पात्र जीवित हो उठे और साथ में उन्हें श्रोताओं की सराहना भी मिल रही है, दर्शकों की और श्रोताओं की।
यकीनन पंकज भाई, और ये तो होना ही था। अच्छा, इंडिया में हम ये फिल्म कब तक देख पाएंगे?
भारत में भी संभवतः ये मार्च में या फरवरी तक ये रिलीज हो जाएगी थिएटर्स में, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल्स में तो ये आ ही रही लगभग सब जगहों पर। लेकिन जो फिल्म दुनिया का जो एक दस्तूर है कि जब तक कोई कमर्शियल बड़े आर्टिस्ट ना हो और कमर्शियल बहुत ज़्यादा उसका बैकग्राउंड ना हो तब तक किसी फिल्म को रिलीज़ करना थोड़ा कठिन होता है। तो इस तरह की जो ऑफबीट फिल्में बनती हैं, ऑफबीट फीचर फिल्में बनती हैं, उनमें ये किया जाता है कि उनको फेस्टिवल्स में रिलीज़ किया जाता है पहले, और फिल्म एक बार फेस्टिवल्स में अवार्ड ले लेती है तो फिर उसको थिएटर्स में रिलीज़ करना आसान हो जाता है। जैसे हमारे समय की कुछ छोटी फिल्में मसान पिछले साल आई और दम लगा के हईशा, ऐसी फिल्मों के साथ यही हुआ कि उन फिल्मों को पहले फेस्टिवल में डाला गया, जब वो फेस्टिवल में अवार्ड विनिंग हो गई तो फिर उनका रिलीज़ करने का जो प्रोसेस है वो आसान हो गया। तो अभी चूंकि ये पहले ही फेस्टिवल में एक बड़ा अवार्ड ले चुकी है बेस्ट फीचर फिल्म का, और जैसी संभावना है कि इसको टचवुड अगर सब कुछ ठीक रहा तो अच्छे पुरस्कार और सम्मान मिलने हैं, तो उस हिसाब से ये संभवतः फरवरी मार्च या अप्रैल में ये रिलीज़ थिएटर्स में हो जानी चाहिए।
पंकज भाई, आपकी जो साहित्यिक यात्रा रही है अब तक वो भी एक बहुत ही शानदार, बहुत ही चमकदार रही है, तो अपने इस साहित्यिक सफर पर कुछ बताइए हमें कि अब तक जो भी आपको पुरस्कार मिले हैं, जो भी आपने काम किया है, उनसे कितने संतुष्ट हैं और क्या क्या आपको लगता है कि आपकी लाइफ के माइलस्टोन रहे हैं?
सचिव भाई, पहला तो जो मेरा उपन्यास ये वो शहर तो नहीं, उसके लिए मुझे भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार मिलना, वो मुझे लगता है कि वहाँ से मेरे लेखन का एक टर्निंग पॉइंट है। हालांकि उससे पहले मेरा कहानी संग्रह ईस्ट इंडिया कंपनी, वो भी भारतीय ज्ञानपीठ के नवलेखन पुरस्कार के लिए अनुशंसित हुआ था, और वो जो अनुशंसित हुआ था, लेकिन अनुशंसित होने के बाद उस साल का सम्मान किसी दूसरी पुस्तक को मिला था पुरस्कार। तो मेरे अंदर एक प्रकार का चैलेंज आ गया था कि अनुशंसित होने के बावजूद भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तो फिर मैंने अगले साल जब उपन्यास के लिए घोषित हुआ तो फिर मैंने पूरी ताकत लगाकर और पूरी अपनी शक्ति से उपन्यास लिखा, और वो उस उपन्यास के लिए मुझे भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन पुरस्कार मिला। और वो उपन्यास ये वो शहर तो नहीं, उसको कई सारे पुरस्कार और सम्मान मिले, जिसमें वागीश्वरी पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन का और पाखी पत्रिका इंडिपेंडेंट मीडिया इनिशिएटिव सोसाइटी का जेसी जोशी स्मृति शब्द साधक जनप्रिय सम्मान उसको मिला। तो इस प्रकार से तीन बड़े पुरस्कार उसको मिले। फिर उसके बाद वनमाली कथा सम्मान, और फिर ये वो शहर तो नहीं के बाद जो मेरा अगला कहानी संग्रह आया वो था महुआ गठवारिन। महुआ गठवारिन के लिए मुझे अंतर्राष्ट्रीय कथा यूके सम्मान मिला, जो कि लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में मुझे दिया गया। तो कुल मिलाकर मैं अपनी इस साहित्यिक यात्रा से, अभी तक की साहित्यिक यात्रा से संतुष्ट हूँ। अभी जो मेरा नया उपन्यास आया है अकाल में उत्सव, उसको लेकर बहुत बहुत प्रशंसा मिल रही है, और मैं आपको ये शुभ सूचना भी देना चाहता हूँ कि वो जनवरी में आया था और उसके दो संस्करण तो आ चुके थे, और अब दिसंबर में ही उसका तीसरा संस्करण भी आ गया है। और उस उपन्यास को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी के शीर्ष आलोचक मैनेजर पांडे जी ने, जो जनसत्ता समाचार पत्र में उनसे जब पिछले वर्ष की पुस्तकों के बारे में बातचीत की गई, तो उन्होंने उपन्यास खंड में कहा कि पिछले वर्ष मैं एक ही उपन्यास को चर्चा के योग्य मानता हूं, और वो है अकाल में उत्सव। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। तो अभी तक मैं जो साहित्यिक जो भी मेरी उपलब्धियां हैं, मैं उनसे संतुष्ट हूं, और उससे ज़्यादा संतुष्टि मुझे इस बात को लेकर है कि मेरे पाठक मेरे लेखन को अभी भी पसंद कर रहे हैं, और मैं कोशिश करता हूं कि अपने पाठकों को खुश रख सकूं, क्योंकि मेरी पाठक ही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। तो वो अभी तक जैसे अकाल में उत्सव को मेरे पाठकों ने जो शुरू से मुझसे जुड़े रहे उन्होंने बहुत पसंद किया है। तो ये किसी भी लेखक के लिए, बाकी सब सम्मान पुरस्कार और ये सब चीज़ें दूसरी होती हैं, और अपने पाठक की प्रशंसा पहली होती है, मेरे लिए वही महत्वपूर्ण होता है।
बिल्कुल सही कहा पंकज भाई, आप जो कहानियां लिखते हैं वो वाकई कमाल की होती हैं। थोड़ी डार्क शेडेड जरूर होती है, बिल्कुल जिंदगी की तरह कड़वी थोड़ी सी, लेकिन बहुत ही गहरी होती है और जिंदगी के बहुत करीब होती है। लेकिन आपकी कहानियों के साथ साथ आपकी जो गज़लें भी हैं वो भी बहुत कमाल की होती हैं, और मैं ज़रूर जाते जाते आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी कोई अच्छी सी गज़ल हमारे श्रोताओं के लिए सुनवाएं।
धन्यवाद सजीव भाई, आपने जैसा कहा कि मेरी कहानियाँ कुछ कड़वी यथार्थ के साथ होती हैं, मेरी गज़लें भी आपने सुनी है, मेरी सारी गज़लें लगभग वो भी वैसे ही होती हैं। एक गज़ल है वो आप श्रोताओं को जरूर सुनाना चाहूंगा। मतलब कुछ यूं है कि चादरों से पैर बाहर आ रहे हैं, चादरों से पैर बाहर आ रहे हैं, क्या करें इस वास्ते कटवा रहे हैं। चादरों से पैर बाहर आ रहे हैं, क्या करें इस वास्ते कटवा रहे हैं। और ये शेर कुछ यूं कहा है, हैं लिखे दीवार पर नारे ही नारे, हैं लिखे दीवार पर नारे ही नारे, सब्र करिए रोशनी हम ला रहे हैं। चादरों से पैर बाहर आ रहे हैं, क्या करें इस वास्ते कटवा रहे हैं। और ये शेर भी देखिए कि सोच में चिंता में डूबी उर्मिला है, सोच में चिंता में डूबी उर्मिला है, राम कल वनवास पर फिर जा रहे हैं। चादरों से पैर बाहर आ रहे हैं, क्या करें इस वास्ते कटवा रहे हैं। हमने आवेदन में बस मांगी थी रोटी, हमने आवेदन में बस मांगी थी रोटी, वो बजट घाटा हमें समझा रहे हैं। चादरों से पैर बाहर आ रहे हैं, क्या करें इस वास्ते कटवा रहे हैं। और आखिरी शेर कुछ यूं कहा है कि कोई सुन लेगा नहीं है डर ये हमको, कोई सुन लेगा नहीं है डर ये हमको, हम तो एक बहरे समय में गा रहे हैं। चादरों से पैर बाहर आ रहे हैं, क्या करें इस वास्ते कटवा रहे हैं। शुक्रिया।
हम तो एक बहरे समय में गा रहे हैं, वाह पंकज जी क्या बात है। पंकज जी आपने अपना कीमती समय दिया, हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी जो फिल्म आ रही है वो यकीनन बहुत ही शानदार होने वाली है और मुझे लगता है कि सभी सिनेमा प्रेमी दर्शकों को ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये फिल्म थिएटरों पे आए और हम इसे देख पाएं। तब तक आपके सभी आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं लीजिए और धन्यवाद स्वीकार कीजिए कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम यानी कि एक मुलाकात ज़रूरी है का हिस्सा बने।
जी सजीव जी, रेडियो प्लेबैक इंडिया के सभी श्रोताओं को मेरी ओर से नमस्कार, अभिवादन। और इसी तरह से अच्छे संगीत को सुनते रहें, अच्छे साहित्य को पढ़ते रहें, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों ये थे पंकज सुबीर जी, आपके साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा, आपका दोस्त आपका साथी सजीव सारथी किसी और नए कलाकार के साथ। तब तक मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।